The Jeff Weiler Columbus Auto Mall is turning up the heat this summer. Buy now with no down payment and no payments for 120 days.
That means no payments until fall. No payments until fall.
With over 8,000 cars, trucks, and SUVs available, there's something for every budget and lifestyle. Pick your ride, get approved, and drive home today with nothing due until autumn.
But hurry, these offers won't last forever.
Visit Jeff Weiler Columbus Auto Mall and take advantage while selection is strong.
उसने कुछ कहा, मैंने कुछ कहा, I started crying and I left. मैंने कहा ये ज्वेलरी, ये इसके डॉक्यूमेंट्स, आप बेचिए, पैसे रखिए, मैं निकलती हूँ.
नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द जोश टॉक्स पॉडकास्ट पर, जहां हम भारत के कोने कोने से आए हुए प्रेरणादायक लोगों की कहानियां सुनेंगे. मैं हूं आपका होस्ट सिद्धांत नाग, और आज हम बात करने जा रहे हैं स्वाति शर्मा से, जो एक न्यूज एंकर रह चुकी हैं और आज एक यूट्यूबर हैं जो बी वेल्दी नामक चैनल को चलाती हैं. स्वाति जी, स्वागत है आपका द जोश टॉक्स पॉडकास्ट पर. हम जानना चाहते हैं कि आपकी कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है.
तो हम पैदा हुए थे 1982 में, मुजफ्फरपुर बिहार का एक शहर है. मुजफ्फरपुर, गया, बनारस, दिल्ली, पुणे, मुंबई और फिलहाल बैंगलोर, ये मेरा शहरों का सफर है. पैदा हुए थे जिस घर में, वहां दो चीजों की ना भयंकर कमी थी, और दोनों चीजें बहुत अहम है इंसान के लिए, पैसा और प्यार, दोनों ही नहीं था हमारे घर में. गजब तंगी का माहौल. पापा जहाँ काम करते थे, बिहार सरकार के अंदर थे वो, लेकिन उनकी तनख्वाह महीनों तक नहीं आती थी. तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि जिंदगी का, एटलीस्ट ग्रोइंग अप ईयर्स का, एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारा उधारी में निकला है. घर के किराए कभी वक्त पे नहीं गए, तो मकान मालिक का तकाजा, दूध वाला, राशन वाला, स्कूल की फी. हमें याद है हमारे स्कूल में एक प्यून थे, अर्जुन जी, वो हर महीने की शुरुआत में हर क्लास में जाते थे एक लिस्ट लेके, और टीचर से बोलते थे इन बच्चों को फादर, जो हमारे प्रिंसिपल थे, उन्होंने बुलाया है. और उस वक्त ना दिल इतना तेज धक धक करता था, वो ह्यूमिलिएशन, क्लास में आपका नाम जब कॉल आउट होता है और उसके बाद वो क्लास अपनी सीट से नीचे ऑफिस तक जाना, और वहाँ जाके उस छोटू स्वाति की आंखें ना अपनी बहन को ढूंढती थी कि दीदी रहेगी तो मुझसे ये सवाल नहीं किया जाएगा कि तुम्हारी फ़ी अभी क्यों नहीं आई है. और ये पूरा सिस्टम ही बहुत ही वियर्ड सा था कि बच्चे से क्यों पूछते हैं कि आपकी फ़ी क्यों नहीं आई है, पेरेंट्स से पूछिए. लेकिन वो ह्यूमिलिएशन, वो फीलिंग आज तक शायद अभी भी कहीं मेरे अंदर बैठी हुई है कि कोई मुझसे मेरे पैसे को लेके सवाल ना करे, या ये ना कहे कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं और तुमने ये क्यों नहीं भरा है. क्योंकि घर में पैसे की बहुत ज़्यादा तंगी थी, हमारे घर में प्यार भी नहीं था. जहाँ पैसा नहीं होता है, वहाँ प्यार कहीं अपने आप रास्ता बाहर का ढूंढ लेता है. हमारे यहाँ बहुत लड़ाइयाँ नहीं होती थी ऊंचे शब्दों में, या फिर कोई गाली गलौज या मार पिटाई नहीं होती थी, लेकिन हमारे यहाँ पेरेंट्स के बीच में बातचीत नहीं होती थी. माँ ने पैसे की कमी थी क्योंकि, तो उन्होंने एक ब्यूटिशियन का कोर्स किया और कमाना शुरू किया. लेकिन पापा और मम्मी के बीच में ये हमेशा बना रहा एक कश्मकश कि बच्चों का खर्चा कौन उठाएगा. अब क्योंकि पापा की सैलरी वक्त पे नहीं आती थी, आइडियली माँ के पास क्योंकि कमाई हो रही थी, उन्हें करना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अपनी ज़िंदगी में उन्होंने जो देखा था, वो इतनी फिनेंशियली इनसिक्योर हो गई थी कि उन्हें लगता था कि ये मेरी जिम्मेदारी है. वो कर रही थी हमारे लिए, लेकिन उनको लगता था कि ये बेसिकली पापा की जिम्मेदारी. और इस चक्कर में हम लोग हमेशा, जब भी पैसे की ज़रूरत होती थी, तो हम या तो माँ की शक्ल देख रहे हैं, पापा की शक्ल देख रहे हैं, और वो लास्ट मोमेंट तक सस्पेंस या एंजाइटी बनी होती थी कि भाई इस बार का पैसा कहाँ से आने वाला है. और यही हालचाल स्कूल में रहा, यही चीज़ कॉलेज में रही. कॉलेज में जब आप जाते हैं तो आप हॉस्टल में रह रहे होते हैं. मेरे साथ तीन रूममेट थी, बहुत प्यारी, अच्छे घरों से थी, फिनेंशियली साउंड फैमिली से थी, तो आपको वो अखरता इतना ज़्यादा है कि आपको पता ही नहीं कि आपको पॉकेट मनी मिलने वाली है कि नहीं. तो एक तरीके से आपको ये सिखा गया, मुझे एटलीस्ट, कि जितने पैसे हैं उतने में मैनेज कैसे करना है. लेकिन एक पैसे को लेकर डरना हमेशा अंदर, कि मेरे पास पैसा नहीं है और इसलिए मैं बाकियों से कम हूँ, मुझे सामने वाले से दब के रहना है, मुझे अपनी आवाज़ नहीं उठानी है, मुझे जो गलत लगता है मुझे वो नहीं कहना है क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है और मैं आपसे कम हूँ, ये फीलिंग एक लंबे अरसे तक मेरे अंदर बनी रही, इनफैक्ट अभी कुछ साल पहले तक भी। इस पे हम बाद में बात करेंगे। कॉन्फिडेंस के मामले में हम एकदम जीरो थे। अब आप बोलेंगे कि फेंक रही है, क्योंकि न्यूज़ चैनल की एंकर रह चुकी है, अपना चैनल चला रही है, कैमरा देख के बात कर लेती है, इसको क्या कॉन्फिडेंस की कमी होगी। लेकिन आज भी कैमरा फेस करते वक्त दिल धड़कता है और ये लगता है कि सामने से कोई बोल देगा क्या बकवास कर रही हो, क्यों, ये कहाँ से आया। अगेन वापस चलते हैं बचपन में, क्योंकि माँ के साथ ज़्यादा वक्त बीता हमारा और माँ बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी अपने हालात की वजह से, तो उनका गुस्सा बहुत तेज था और वो गुस्से में कब क्या बोल जाएंगी या कब साइलेंट मोड पे चली जाएंगी हमें नहीं मालूम होता था। और एज अ किड सबको अपने बच्चे पेरेंट्स का अप्रूवल चाहिए होता है, एक्नॉलेजमेंट चाहिए होती है, प्यार चाहिए होता है, वो सब था ही नहीं। तो हमने अपना बचपन ही बहुत डर के निकाला, कभी कोई तारीफ ही नहीं हुई कि तुम अच्छा कर रही हो, या फिर किसी ने तारीफ कर भी दी तो उनको शांत करवा दिया गया। तो हर चीज में आपकी गलती है, अगर आपने कुछ सही भी किया है तो भी आप सही नहीं है, इस ख्याल के साथ पूरा बचपन निकला। घर में पेरेंट्स की बातचीत नहीं, घर का माहौल टेंस्ड, कोई कहीं से आपको तारीफ करने वाला नहीं, परवरिश हो रही थी, प्यार नहीं मिल पा रहा था और इसलिए कॉन्फिडेंस एकदम जीरो। तो पूरा बचपन इसी तरीके से पैसे की तंगी के साथ। हमें याद है एक इंसिडेंट, कॉलेज में हम थे, थर्ड ईयर ग्रेजुएशन की बात है। हम लोग के यहाँ जब फेयरवेल होता है तो लड़कियों को साड़ी पहननी होती है और मेरी माँ के पास साड़ियाँ थी, लेकिन ऐसी नहीं जिसको आप पहन के फेयरवेल में जाके थोड़ा शो ऑफ कर सके। तो माँ के पार्लर में कस्टमर्स आती थी, उसमें एक बहुत अच्छी सी पैसे वाली आंटी थी, उनसे अच्छी बनती थी मम्मी की, तो मम्मी ने उनसे शायद बात की और उधार पे कपड़े पहनना हमने बचपन से किया हुआ है। तो मम्मी ने उनके घर भेजा, उनका बहुत बड़ा सा घर था कॉलोनी में। एक तो पहले उनके घर में घुसते ही लगा ना कि यू डोंट बिलोंग टू दिस प्लेस, यू नो आपको पैसा दिखाता था कि आप कहाँ पे खड़े हैं, आपकी औकात क्या है। घर में घुसे उन्होंने अपने बेडरूम में हमें लेकर गई वो, और वार्डरोब खोला, वहाँ पे बहुत सारी नहायत ही खूबसूरत साड़ियाँ टंगी हुई थी। सो आई वॉज रियली हैप्पी कि इसमें से कोई एक मिलेगी तो हम एकदम पहन के मस्त लगेंगे और खुश। उन्होंने दो साड़ियाँ निकाली उसमें से, एक बहुत खराब और एक उससे थोड़ी कम खराब, और उन्होंने कोई ऑप्शन ही नहीं, उनसे मुझसे पूछा नहीं कि बेटा आपको क्या पहनना है, यू नो जस्ट ये एक है एक ये है। आई टुक दो साड़ी टू माय हाउस एंड आई टोल्ड माँ कि ये दोनों तो अजीब सी है, तो मम्मी ने कहा मेरे पास जो है उससे तो बेहतर है। देन आई टुक वन ऑफ दो साड़ीज और वो पहना, लेकिन वो कहीं रह गया था अंदर कि जब आपको कोई देता है ना, आप मांगने की हालत में खड़े हो किसी के सामने, तो जो मिलता है वही ले लेना चाहिए, आप नेगोशिएट बार्गेन नहीं कर सकते हो। तो दैट स्टेड विथ मी, दैट स्कूल की फी वाला इंसिडेंट और ये साड़ी वाला।
स्वाति जी, बचपन से ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स देखने के बाद जब आखिरकार आपको जॉब मिली तो फिर उसके बाद लाइफ कैसी रही?
नौकरी लगी, पैसे कमाने शुरू किए, तो जो डर था वो कंटिन्यू कर रहा था, लिमिटेड मींस में रहने का की जो आदत थी वो कंटिन्यू हो रही थी, लेकिन इन्वेस्टमेंट की आदत वो रिग्रेट रह गया मेरा कि मैंने अर्ली ईयर्स में शुरू नहीं किया, जबकि हम आई वॉज सराउंडेड बाई पीपल जो सिर्फ पैसे की बातें ही करते थे। इट वॉज अ बिजनेस चैनल जहाँ पर मैं काम कर रही थी, वहाँ दिन रात इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, लेकिन एक अंदर से ना पैसे को लेकर वो भी हो गया था कि आई डोंट केयर अबाउट मनी, मुझे सुनना ही नहीं है पैसे के बारे में। वो सब करते करते दो तीन साल निकल गए, फिर कुछ दोस्त बने उस सर्कल के, दोनों ने पुश किया और लकली मेरा इन्वेस्टमेंट शुरू हुआ। ये एक बहुत बड़ा रिग्रेट है कि मैंने 2006 में ही क्यों नहीं शुरू कर दिया था, 2008 या 9 तक का इंतजार क्यों किया, लेकिन अच्छी बात है कि वो शुरू हो गया। कभी कोई शौक नहीं था बहुत बड़े घर में रहने का या बड़ी गाड़ी चाहिए या ब्रांडेड कपड़े पहनने, कोई शौक कभी जिंदगी में वैसा नहीं रहा। कम में आई वॉज एक्चुअली हैप्पी, लेकिन वो फेज अलग चैलेंज लेकर आया। पैसे तो आ गए आपके पास, लेकिन आप प्यार के प्यासे इंसान हो, तो जहाँ प्यार मिल रहा है आप वहाँ भाग रहे हो। और वहाँ पे दूसरी गलती की मैंने अपनी ज़िंदगी में कि मैंने हमेशा रिश्तों को ज़्यादा तवज्जो दी अपने काम के ऊपर। मुझे आज भी लगता है कि अगर मैंने उन 6 साल में अलग तरीके से काम को अप्रोच किया होता तो मेरा करियर ग्राफ कहीं और किसी और तरीके का दिखता आज की डेट में। लेकिन उस वक्त मुझे इश्क बहुत जल्दी और बहुत दफा हुआ और हर बार मुझे डंप किया गया। तो आई एम नॉट गुड एनफ ये जो था फीलिंग, ये कूद कूद के उस वक्त बाहर आया। अच्छा, हम एक तरफ क्या कर रहे थे, क्योंकि आप बहुत बड़ी जगह काम कर रहे हो, आप स्क्रीन पे दिख रहे हो, तो आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा थोड़ा आ रहा है, लेकिन वो फसाड है। हम कहते थे कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मुझे कैसे देख रहे हैं, मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, लेकिन मेरा दिल जानता है कि हमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ता था। तो हम एक फसाड लेके चले काफी वक्त तक कि आई डोंट केयर, लेकिन जैसे ही वो ब्रेकअप्स हुए इतने सारे, एक और आपको ये लगता है ना कि पहली बार जब ब्रेकअप होता है तो आप संभाल लोगे खुद, मतलब ठीक है दर्द हो रहा है लेकिन अगली बार शायद आसान हो जाएगा। जब एक ही चीज़ आप बार बार एक्सपीरियंस करते हो तो हैंडल करना आसान हो जाता है, लेकिन नहीं होता ये प्यार इश्क मोहब्बत में, ऐसा कुछ भी नहीं होता। चौथी बार जब ब्रेकअप हुआ ना, बैंड बज गई थी, बैंड बजी ऐसी कि आप अपनी जान लेने पर उतारू हो गए थे, और वो काम मैंने भी किया। चौथी बार जब ब्रेकअप हुआ तो मैंने खाना पीना छोड़ दिया था फॉर गुड 1 week, आई डिड नॉट ईट एनीथिंग। और आप जो सोच सकते हैं, जिस तरीके से आदमी अपने आप को डिस्ट्रॉय करता कर सकता है, वो हर चीज़ उस वक्त ट्राई कर ली। ड्रग्स वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक दिन मेरे एक दोस्त थे, वो मुझे कॉल कर रहे थे और मैं फ़ोन नहीं उठा रही थी, एंड ही केम रनिंग। मैं घर पे बेहोश पड़ी हुई थी अपने कमरे पे। अगर वो उस दिन शायद नहीं आते तो शायद मैं आज यहाँ खड़ी नहीं होती। तो वो पूरा फेस काम पे हार्ड वर्किंग तो शुरू से थे, लेकिन वो जो 6-7 साल का दौर था, वो उसने मेरे आई एम नॉट गुड इनफ, मैं कम हूँ, मुझे लोग पसंद नहीं करते, मुझे लोग प्यार नहीं करते, उसने काफ़ी कहते ना आगे वाली सीट ले ली। पैसा निवेश चल रहा था आगे पीछे, लेकिन फोकस ज़्यादा वहाँ पर नहीं था, एंड दैट्स अ रिग्रेट, बिग ह्यूज रिग्रेट। और लर्निंग ये है कि कभी भी जब अफेयर में होते हैं ना, तो अपने बॉयफ्रेंड्स या गर्लफ्रेंड्स पे पैसे मत लुटाओ, बाद में बड़ा पिंच करता है कि यार किन निकम्मों पे पैसे खर्च कर दिए आपने। और मैंने बहुत लुटाए, बहुत मतलब बहुत। तो पूरा जर्नी जो था नौकरी वाला फेज, इन्वेस्टमेंट चला, लकली अच्छी खासी सेविंग हुई। जब नौकरी बदली, एक और बड़ी कंपनी में गए, ये आपका अंडर कॉन्फिडेंस कॉम्प्लेक्स, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कूद कूद के फिर बाहर आया। इट वॉज अ बैड स्टिंट, आई डिडंट नो हाउ टू हैंडल माई सेल्फ, इट वॉज दैट बैड। 3 साल में ही ना, मतलब कॉन्फिडेंस की बैंड बज गई, थोड़ा बहुत भी था ना वो भी खत्म हो गया। और मैंने थक हार के विदिन 3 years मैंने कहा कि मुझसे ना नौकरी नहीं होगी और मैं कभी काम नहीं करूँगी। इतना हम डर गए थे कि हमें लगा कि हम किसी ऑफिस में पैर नहीं रख सकते। अब कैमरा फेस करना तो बहुत दूर की बात है। मैंने अपने पति से कहा था, तब तक शादी हो गई थी, कि भाई अब काम नहीं हो पाएगा, अब हम हाउसवाइफ बन जाते हैं।
जो आप अभी सुन रहे हैं, अगर आपको पसंद आया हो और आप ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां आगे भी सुनना चाहते हैं, तो फॉलो बटन और ठीक उसके बगल में बेल आइकॉन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपने जॉब छोड़ने का फैसला तो कर लिया स्वाति जी, पर बी वेल्दी की शुरुआत कैसे हुई और क्या उस अनुभव से आप हमारे लिसनर्स को कुछ एडवाइस दे सकती हैं?
तो मेरे पति ने बहुत ही टू द पॉइंट बात कह दी कि स्वाति, तुमसे मैंने शादी की थी क्योंकि तुम एक वर्किंग इंडिपेंडेंट बंदी हो, फिनेंशियली इंडिपेंडेंट तुम्हारा होना मेरे लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन कंस्ट्रक्टिवली ऑक्यूपाइड हो, तो अगर तुम नौकरी छोड़ दोगी तो मेरा वो परसेप्शन तुम्हारे लिए चेंज हो जाएगा। और पता नहीं, एंड आई वाज शॉक्ड कि ये मुझे मैंने उसको कैसे लिया उस लाइन को, कि ये मैं तुमसे प्यार इसलिए करता हूँ क्योंकि तुम काम करती हो, मैंने उसको वैसे लिया जबकि वो ये कह नहीं रहे थे। मैंने झटका लगा, टुक सम टाइम ऑफ, तब फाइनली एक मेडिटेशन कोर्स ज्वाइन किया, क्लैरिटी मिली और यूट्यूब चैनल की शुरुआत हुई 2017 में। तब भी जब आप काम शुरू करते हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ होते हैं, तो स्वाति कुमारी XYZ, स्वाति कुमारी ABC, आपकी जो पहचान है ना, वो आपकी खुद की नहीं है, वो बोरोड है, वो कंपनी के नाम से आपको लोग जानते हैं। तो लोग पूछते थे क्या कर रही हो आजकल, यूट्यूब चैनल, हाँ उसके अलावा, अच्छा कहीं काम नहीं कर रही हो, अब TV पे नहीं आती हो। वो पूरा फेज मुश्किल किसी के लिए भी हो सकता है, जिसने भी कहीं से बड़ी कंपनी में काम शुरू किया है और अपना फिर कुछ करने का सोच रहे हैं, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट फेज हो सकता है, और उसी टाइम पर ना आप आइडेंटिफाई करते हैं कौन आपके साथ क्यों जुड़ा हुआ था, और उस वक्त बहुत कुछ साफ हो जाता है। तो 2017 में हमने शुरू किया, अभी बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर नंबर्स हालांकि अभी भी नहीं है, 5 लाख से थोड़ा सा ज़्यादा, लेकिन फिर भी अपना काम है तो सुकून है। और वो जो सब लोग कहते हैं ना कि प्यार पे ज़िंदगी चल जाती है, हम अनुभव से कह सकते हैं पैसा मायने रखता है। अगर प्यार ज़िंदा रखना है तो पैसे को होना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा या कम की बात नहीं हो रही है, लेकिन पैसा होना ज़रूरी है। और पैसे को लेके पार्टनर्स के बीच में तालमेल या एक ओपन कम्युनिकेशन बहुत मायने रखता है। तो ये सब करते 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 पैसे को लेके जर्नी मेरी शुरू हुई 1982 से, अभी तक चल रही है। अब पैसे को लेके हम कैसा महसूस करते हैं? पैसा मेरे लिए सिर्फ एक जरिया है जो एक आज़ादी देता है मुझे कि मैं अपना वक्त किस तरीके से खर्च कर सकती हूँ। अगर मुझे काम के बीच में 10 दिन का ब्रेक चाहिए होता है कि मैं जा रही हूँ विपश्यना मेडिटेशन के लिए, आई डोंट हैव टू थिंक ट्वाइस, आई जस्ट गेट अप एंड लीव। पैसा मुझे आज़ादी देता है उन सभी लोगों की हेल्प करने के लिए जिनको मेरी हेल्प की ज़रूरत है। इनफैक्ट हमारा एक कॉमन गोल है, मेरा और मेरे पति का, एक किटी या कॉर्पस क्रिएट करना, वो सिर्फ और सिर्फ लोगों की मदद के लिए होगा। मतलब जनता जन कल्याण संस्थान नहीं खोल रहे हम लोग, लेकिन जो आपके करीबी लोग हैं अगर उनको कभी कोई ज़रूरत हो तो आप वो पैसा बिना सोचे समझे उनको दे सके, ये हमारा एक गोल है, उसके लिए किटी क्रिएट करना। पैसा प्यार क्या लेकर आता है ज़िंदगी में? टू अ सर्टेन एक्सटेंट। पैसा क्या सुकून लेकर आता है ज़िंदगी में? टू अ सर्टेन एक्सटेंट। तो आज पैसा मेरे लिए इतना ही मायने रखता है कि आज से 20-25-30 साल के बाद जब हम शायद काम करने की हालत में ना हो, उस वक्त मुझे दोबारा कभी भी ज़िंदगी में किसी के आगे ऐसे ना करना पड़े कि मेरा ख्याल रखने के लिए या खुद का ख्याल रखने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी हेल्प कर दो।
तो दोस्तों, ये थी स्वाति शर्मा, जिन्होंने हमें बताया कि लाइफ में मनी मैनेजमेंट कितना ज़रूरी होता है। आज के पॉडकास्ट में हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने जोश को बनाए रखने के लिए फॉलो बटन और बेल आइकॉन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको आज का एपिसोड सुनकर अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों और अपने परिवार के लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जिन्हें शायद अभी जोश की ज़रूरत हो। हम उम्मीद करते हैं कि आज के एपिसोड ने आपको एक जोश भरा कदम उठाने के लिए प्रेरित किया होगा। मैं सिद्धांत नाग आपसे फिर मिलूंगा द जोश टॉक्स पॉडकास्ट के अगले एपिसोड पर।
द जेफ वाइलर कोलंबस ऑटो मॉल इज टर्निंग अप द हीट दिस समर। बाय नाउ विद नो डाउन पेमेंट एंड नो पेमेंट्स फॉर 120 days. That means no payments until fall. No payments until fall. With over 8,000 cars, trucks, and SUVs available, there's something for every budget and lifestyle. Pick your ride, get approved, and drive home today with nothing due until autumn. But hurry, these offers won't last forever. Visit Jeff Weiler Columbus Auto Mall and take advantage while selection is strong.
You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.